ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञेय राधे तन्मय अंगशारिणीं मन्दे कृतेन्दे वरं जातं जागरोचि सांविदवतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदि सद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्द निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् सप्रथम हमें हमार परमानंदतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्वतः श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज पाद पद में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण कर तत्पश्चात आदरणीय सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण वर्षा एंड वर्षनी श्रद्धेय श्रोता आज सवेरे भी बतलाया था ये कार्तिक महीना बहुत पवित्र दिन है सबकी अधिष्ठात्री इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा जी है। इस महीने में जो राधा गिरधन का पूजन करता है और नमामि श्लोक का प्रतिदिन भाव समझ करके कीर्तन करता है उसको राधा गिरधारी जी का राधा दामोदर जी की भक्ति होती है। इसी महीने में प्रधान प्रधान वैष्णवगण का आविर्भाव या तिरुभाव हुआ है। इसी महीने में कृष्ण की वृंदावन की मधुर मधुर लीलाएं जिसमें दामबंधन लीला इसी महीने में गोवर्धन धारण इंद्र जी का दर्प चूर्ण किया और बहुत सी लीलाएं इसी में सब लीला श्रोमणी रास लीला हुई जिसमें राधा जी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाई गई। इस प्रकार से इसी महीने में हमारे गुरु जी को शरद पूर्णिमा के दिन में तिरोभाव हुआ। गुरु महाराज जी अत्यंत धार्मिक और समृद्ध जमींदार परिवार में जन्मे थे। बाल्यकाल की बहुत सी घटनाएं हैं। एक बार कोई चील पक्षी उनको अपने मुख में लेकर के आकाश में उड़ गया। सब लोग हाय हाय करने लगे तो चील आकर के थोड़े से पानी में उनको छोड़ दिया। पास पड़ोसियों ने दौड़ करके उनको बचाया। उनके पिताजी परम धार्मिक थे। उनके पितामह जी प्रसिद्ध एक कोई योगी थे, याद नहीं उनका नाम, उनके शिष्य थे। बचपन से गुरु महाराज जी बड़े कोमल स्वभाव के और पिताजी के साथ में जहाँ पर गीता इत्यादि का भागवत का प्रवचन होता वहां पर उनको ले जाते थे और ये वहां पर जाकर के बड़े ध्यान से सुनते थे। कुछ बड़े होने पर गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। ये गांधी के बाम पक्ष वाले सुभाष चंद्र जी जैसे थे, वैसे गवर्नमेंट के विरुद्ध में षड्यंत्रकारी थे, इसलिए गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस इनको खोज रही थी। तब तक छिपे हुए रहे थे। कुछ दिनों के बाद में जब 16 वर्ष की उम्र हुई तो दौलतपुर कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहीं से अपनी पिसी माँ सरोज वासिनी, सब आठ वासियों की दीदी, प्रभुपाद के जितने शिष्य, वो प्रभुपाद की सबसे पहली विदेशी महिला थी। श्रील प्रभुपाद किसी महिला को हरिनाम दीक्षा नहीं देते थे, किंतु वो आई और पढ़ी लिखी थी, खूब मेधा संपन्न थी। उन्होंने क्या कहा, आप पुरुषों को ही उद्धार करने के लिए आए हैं, महिलाओं को छोड़ दें, महिलाएं जगत में मरेंगी। तब प्रभुपाद ने,
जीव नहीं है आत्मा नहीं है,
क्या वो आत्मा नहीं है, पुरुष ही केवल आत्मा है। तो प्रभु पराजी निरुत्तर हो गए और उन्होंने पहली बार उनको हरिनाम दीक्षा दी। उसी शरण वाहिनी की इनकी पिसी माँ लगती थी बुआ जी, वो प्रभुपाद के पास में 1916 ईस्वी में ले आए, दौलत कॉलेज में पढ़ते थे। और उस समय प्रभुपाद के पास में आए थे, 9 दिन परिक्रमा चल रही थी। प्रभुपाद को बालक को, उनका नाम था विनोद बिहारी, विनोद बिहारी बालक को उनके चरणों में दे दिया। प्रभुपाद जी के उस समय बहुत कम शिष्य थे, गृह त्यागी, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद ने एक दिन वक्ता ने कहा, मैं नवद्वीप के 9 द्वीपों में मठ स्थापन करूंगा, बंगाल के बड़े बड़े शहरों में करूंगा और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर इत्यादि हैं, धार्मिक स्थान है, वहां पर अपना मठ करूंगा। तो प्रभुपाद ने सरोजपीसी वासिनी ने कहा, सोए हुए लाख रुपए का स्वप्न देख रहे हैं,
छेड़ा काठा दुनिया लाख का स्वप्न देख रहे हैं,
छेड़ा
काठा दुनिया लाख का
काठा खाता दुनिया के,
छेड़ा काठा दुनिया लाख का स्वप्न देख रहे हैं।
तब
अपने मोड़ देख रहे कि
ओ कौन इतना मठ देखेगा, तो उन्होंने कहा जी विनोद बिहारी देखेगा। और सचमुच में उन्होंने प्रभुपाद के समय, उसके बाद में प्रभुपाद के बाद भी उन्होंने देखा। प्रभुपाद ने इनको वहां का मैनेजर नियुक्त किया मायापुर का, कोई भी मालगुजारी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। उन्होंने उनके पास में 2 घोड़े, छोटा एक बड़ा, उसी पर चलते थे और जमेदारी स्टाइल से शांतिपुर धोती और
आधी पंजाबी,
आधे पंजाबी पहनते थे और कटहल तले रहते थे। और वहीं पर वहां के बड़े बड़े धनी मानी मुसलमानों को बुलवा करके और उसको पिटवाया, देखते ही सब लोगों ने झर करके वो मालगुजारी उनको दे दी। प्रभुपाद के समय में मायापुर में जहाँ प्रभुपाद जी की समाधि पीठ है, वहां पर मुसलमानों का कब्बर गा था आस पास में, उसका चारों तरफ से घेर ऐसे ही था। प्रभुपाद गुरु महाराज जी ने सोचा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी इतना बड़ा भारी मठ स्थापन कर रहे हैं, प्रचार केंद्र, और यहाँ पर मुसलमानों का कब बरगाह रहेगा। इसलिए उन्होंने रात की रात में ऑर्डर देकर बड़े बड़े आम के इतने पौधे और कटहल के और दूसरे मंगवा लिया, और रात में कब्बरगाह को फेंक करके और वहीं पर पेड़ लगा दिए। दूसरे दिन मुसलमानों ने कोर्ट पुलिस में खबर दिया, पुलिस वाले आए तो इन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम्हें कैसे एक दिन में कहीं इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, आप ही एक ही रात में हो जाते हैं, ऐसा सुन करके पुलिस चला गया, उनको डंडी को डांट डपट दिया। इसलिए मायापुर में और भी ये कर दिया। प्रभुपाद की मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए, गुरु जी का मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए आंखों में
प्राण लेकर
रहते थे। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध किसी ने लिखा, जैसे सावी सारा ने, उन्होंने कहा जैसे ये गौड़िया मठ के लोग रस तत्व नहीं जानते हैं, आपकी गुठली को जो हम लोग
फेंक देते हैं,
उसे खा करके और उसी को जूठे अटली को
चूसते हैं,
तत्व दर्शन इत्यादि का प्रचार करते हैं, रस तत्व का विवेचन नहीं करते। तो गुरु महाराज ने इस कठोर इसका प्रतिवाद किया। कोर्ट में उन लोगों उन्होंने 5 प्रबंध लिखने के लिए आश्वासन दे लिखा गौड़ीय पत्रिका में, सौरी सारा पीते गौरव रावण सीता हरण और मुझे याद नहीं, ऐसा सुन करके उन लोगों का होश उड़ गए और मेदिनीपुर कोर्ट में उन्होंने
केस किया।
गुरु महाराज से मैंने कहा कि उन्होंने केस किया है, यदि आपको सजा हम लोगों को, गुरु महाराज, बानू महाराज, त्रिविक्रम महाराज, नृसिंह महाराज, मेरा, ये सब हम लोग गौड़ीय पत्रिका के संपादक और प्रकाशक थे, सब लोगों पर केस किया। गुरु महाराज को कहा जैसे कलकत्ते के अच्छे एडवोकेट के आप लेकर के चलिए। सुनकर के गुरु महाराज बोले, हंसने लगे, और कलकत्ता में सबसे बड़े जो एडवोकेट थे उनका नाम मनमत राय था, उनको ले गए। जब गए तो कोर्ट देख करके कांप गए सब लोग। उन्होंने कहा जैसे कोर्ट के ऑफिसर ने, जज ने कहा, अरे भाई आप लोग सुलह इनसे कर लीजिए। गुरु महाराज ने कहा जी सुलह की क्या बात है, हम लोग सन्यासी हैं, जो सत्य बात होगी हम कहेंगे,
समाज सुधारक है।
और वकील हमारे मोहम्मद जी ने कहा हम इसको प्रूफ करने के लिए आए हैं कि इन्होंने जो कुछ लिखा है उसी, इसको हम कलकत्ते से आए हैं। तब किसी प्रकार से हाथ जोड़ करके सुलह करवा दिए। गुरु महाराज ने कहा जैसे ऑफिसर भी करेंगे हम इसका प्रतिवाद करेंगे। इतने धुरंधर थे प्रभुपाद के विरुद्ध जो कुछ बोलते थे। एक बार प्रभुपाद जी के गत होने पर परलोक गमन के बाद में मथुरा में थे, उस समय निम्बार्क संप्रदाय का एक कोई मासिक पत्रिका थी, उसमें लिखा केशव काश्मीरी जी जब आए बंगाल में नवदीप शहर में तो उन्होंने महाप्रभु को परास्त कर दिया और महाप्रभु को उन्होंने गोपाल मंत्र दिया। गुरु महाराज को मैंने दिखलाया, कहा कि पकड़ो कलम, धरो कलम। उन्होंने लिखवाया, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, उसका जीव गोस्वामी ने उल्लेख नहीं किया, कहीं भी बलदेव विद्याभूषण ने भी उनका कहीं भी कोई
उल्लेख नहीं है,
उल्लेख नहीं किया। और सब संप्रदाय के लोगों ने भी उसका कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। अब तो उन्होंने कोर्ट में नालिश किया, मानहानि का 1,00,000 रुपए का मानहानि का, उस समय का 1,00,000 रुपया कितना। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि केचुप खोल खोलते सामने रोबे वो बात पुरंदर है, वो बड़े बड़े वकीलों को बैरिस्टरों को परामर्श देता है कि सब मारा खबरदार उसके विरुद्ध में मत जाओ, लौट जाओ चुपचाप और भी मुश्किल हो जाए। वो लोग लौटता है 16 वर्ष की अवस्था में आए थे और उसी समय में परिक्रमा के समय में छत के ऊपर में गुरु जी को हरिनाम दिया। इसके बाद में देने के बाद में 1618 में पढ़ाई लिखाई दौलतपुर कॉलेज छोड़ छाड़ करके सब कुछ वो पढ़ते थे चैतन्य चरितामृत पाठ कोर्स था, तो चैतन्य चरितामृत में आया है श्रीमद् भागवत का श्लोक गुरु महाराज जी ने उसका खंडन करके हम लोग का जो सिद्धांत है सांप्रदायिक वो बदला। कभी इन लोगों को हम पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर किस लिए पढ़ेंगे, छोड़ करके चले आता रहे। उसी समय में उनकी दीक्षा हुई और इसके बाद में प्रभुपाद के जाने के बाद में प्रभुपाद की गौड़ीय पत्रिका नदिया प्रकाश ये सब पत्रिकाएं बंद हो गई, सन्यास छोड़ करके लोग गृहस्थ होने लग गए थे, ब्रह्मचारी लोग घर में लौट करके शादी विवाह करने लगे, नौदीप धाम परिक्रमा बंद हो गई, ब्रजमंडल की परिक्रमा जैसे हम लोग करते थे वो भी बंद हो गई। तो गुरु महाराज जी उसका प्रतिवाद किया तो उनको जेल में जाना पड़ा, मर्डर केस में आरोपी बनाया झूठ मूठ को, किंतु पीछे से ये छूट गए। उसमें प्रभुपाद ने कहा कि तुम संन्यास अभी नहीं लिया, 2-3 बार संन्यास के लिए संन्यास का दंड दंड सब तैयार किया गया। उस समय में प्रभुपाद के मैनेजर थे
कुंज बिहारी विद्याभूषण,
उन्होंने कहा कि इसको संन्यास देने तो मठ की रक्षा कौन करेगा, इसको अभी रहने दीजिए, ये सब व्यवस्था करता है प्रभुपाद। 2-2 बार ऐसा हुआ,
3 बार
इसके बाद जेल में जब थे उस समय हुआ, तुमने अभी तक संन्यास नहीं लिया, जल्दी संन्यास नहीं लेता तो सब कुछ चौपट बढ़ा जो हमने स्थापन किया था वो सब नष्ट हो जाएगा। तब प्रभुपाद जब कि जेल से उठे गौड़ीय मठ को छोड़ करके नवद्वीप में उन्होंने स्थापन किया मठ देवानंद गौड़ीय मठ। उस समय पूज्यपाद श्रीधर महाराज सौती महाराज और जितने गौड़ीय मठ के प्रसिद्ध लोग थे सन्यासी लोग कटवा गए और विश्वरूप के सन्यास के दिन उसी दिन उनको सन्यास दिया। और तब सन्यास लेकर के
सपने बताया तुम्हारा नाम भक्ति प्रज्ञान के सब होगा,
प्रभुपाद ने सपने में ही बताया तुम्हारा नाम भक्ति प्रज्ञान के सब होगा। इसके बाद में आकर के गंगा तट के दोनों तरफ में प्रचार करना आरंभ किया, बहुत लोगों की भीड़ होने लगी सुनने के लिए। बड़े दार्शनिक सिद्धांत श्रीमद् भागवत का गीता का कोई श्लोक उनको मुखस्थ नहीं था, बामन महाराज उनके डायरेक्टर थे, वो कभी कभी श्लोक बोलते तो वो गुरु महाराज क्वचित कर करके श्लोक वो भी नहीं बोलते, केवल विचार बोलते थे, सिद्धांत बोलते थे।
और एक गोविंद भुजागुप्ता में ये याद रखते थे,
उनको श्लोक में इनको याद आ गोविंद भुजागुप्ता है, और यहाँ पर भी भागवत पाठ करते थे और कुछ नहीं, केवल यही गोविंद भुजागुप्ता है इत्यादि कहते थे। जैसे दशम स्थान में लोग क्यों पढ़ते हैं, किंतु ये सारी रस की बातें जब कहते तो उनको मना नहीं करते, किस लिए कहते थे?
अनधिकारी ना पढ़े,
वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? खूब
पढ़े थे,
पढ़े नहीं थे तो कैसे ये नक्षत्र सारे इत्यादि श्लोकों को याद था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका वो नहीं पढ़े थे? जो धीरा धीर माने क्या, जो विश्वास करता है पहले इस कथा को विकृतम बजवत भी दंच विष्णु भक्ति इस निरंतर को सुनने से हृदय का काम, हृदय में काम आता है। काम माने कृष्ण की गोपियों की भावना की जो काम है वो प्रेम, और इसके बाद में उसके प्रभाव से ये दूर हो जाता है। धीर व्यक्ति इसको कहते हैं, धीर व्यक्ति माने जो इसको विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो अपराधी है। इस तरह से योग्य व्यक्तियों के लिए नहीं, उनका जनार्दन महाराज रस की कितनी बातें करते थे, किंतु उनको कभी भी मना नहीं, उनको प्रति वर्ष बुलाते थे आदर का। बहुत कुछ हमने जनार्दन महाराज जी से सीखा है, बहुत कुछ। इसके बाद में अभी तो और बहुत वक्ता है,
ट्रांसलेशन
तो इस प्रकार से वे मथुरा में उन्होंने नवद्वीप के बाद में मथुरा में चुचुड़ा में और सब जगहों में प्रचार केंद्र स्थापित किया, और आसाम में सारे आसाम में उन्होंने प्रचार किया। वहीं से बहुत से आसामी भक्त लोग सब ब्रह्मचारी इत्यादि मठ में थे, और बंगाल के मेदिनीपुर और 24 परगना से सब ब्रह्मचारी। अभी भी हमारे ब्रह्मचारी तीर्थ महाराज जी वहाँ पर प्रचार करते हैं, वहाँ के ब्रह्मचारी लोग सब आते हैं, सब यहाँ के अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी, और ये सब लोग वही कोई सुंदर बन के कहीं कहाँ कहाँ के हैं, मेदिनीपुर और बस 24 परगना, और आज भी ऐसा ही प्राय है। तो इस तरह से कितने वर्ष की आयु मेरे
68
वर्ष की आयु में नवद्वीप में वो कुछ अस्वस्थ हुए, तो उनको कलकत्ता में लिया लिया गया। नरहर प्रभु के भाई को थे, उनके घर में रह करके चिकित्सा हुई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। सब समय नरहरी दा कह करके रोते थे, विलाप करते थे। हमने कहा जैसे अब डॉक्टरों ने मना कर दिया, यहाँ रख कर को कोई लाभ नहीं, जो कुछ होगा नवद्वीप में होगा। नवद्वीप मठ में हम लोग ले आए, दो दिन के बाद में शाम के वक्त में इसी समय में एक प्राय आरती हुई हो रही थी, गला में ठाकुर जी का माला गिर गया, और उसी समय में हम लोग हरिनाम कीर्तन करने लगे, और वो हरे कृष्ण बस। उनका एक शिष्य था आनंद मोहन, बहुत स्नेह करते थे उनके गुरु भ्राता लोग। वो आनंद मोहन के लिए उसको टीबी हो गई, गुरु महाराज जी बहुत रुपया खर्च करके ताम्बरम अस्पताल में मद्रास मिले गए। इसे वहां के उनके गुरु भ्राता लोग कहे, हम लोग इतना परिश्रम करके लाते हैं और ये शिष्यों के लिए खर्च करते हैं, इसलिए मठ छोड़ करके चले गए। तब सबसे पहले हम लोग बाबा महाराज पूज के बाद त्रिविक्रम महाराज ने मुझे संन्यास दिया, पहले संन्यास
1952 में
संन्यास हम लोगों को दिया। नाम रखा गौड़ीय वेदांत
भक्ति वेदांत,
भक्ति वेदांत बामन महाराज, भक्ति वेदांत विश्वकर्म महाराज इत्यादि नाम दिया। मेरा पहले नाम था गौर नारायण दिया था, और मैंने कहा जो नारायण नाम इसमें रहना चाहिए, तो भक्ति वेदांत नारायण महाराज हमारा नाम दिया। लोगों ने कहा वेदांत आप क्यों नाम देते हैं, कहीं वेदांत का नाम रहता है? तो गुरु का महाराज ने कहा कि अभय चरणार विंद को गुरु महाराज प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत टाइटल दिया। भक्ति वेदांत मैंने क्या, वेदांत का जो साम्राज्य भाष्य कर दिया है वो नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य गोविंद भाष्य में जो कहा गया है भक्ति, इसलिए वेदांत में भक्ति की प्रतिष्ठा है, उसके प्रतिष्ठा के लिए हम नाम। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के जो जितने मठ भी हैं उनको उसी तरह से नाम भी रखा, इस तरह से उनके अपार चरित्र हैं, एक घंटे में मैं क्या बोल सकता है। बहुत
जो लोग एक पर खड़े हैं कि बाहुबल चले जाए, ऊपर ढंग की सब व्यवस्था है, उस कार्यक्रम का गेट कर रहे हैं, प्लीज गो अपस्टेयर द बालकनी एंड सो मच गो डोंट एक्सेप्ट गो देयर। अरे कुछ नहीं कि मैं बोल रहा हूं,
हरि ओम गुरुवे गौरचंद्र हरे गाय हरे कृष्णाय कृष्णमाताय चुभक्ते नमो नमः। सो श्री गुरु महाराज इज कंटिन्यूइंग This morning we were discussing how this mantra kati is supremely pure. And that whoever hears and chants, especially this Dhammadrastri, while understanding the meanings, will definitely achieve part of devotion to the feet of Sivana Dhamma. In this mantra kati, so many Vaishnavas appear or disappear.
আমাদের মধ্যে কেউ বলেছে দুপার বেলা আশ্রম মহারাজ বলেছে,
and religious family, and his childhood leaders are unlimited. When he was just a small baby, one eagle carried him in the air in his mouth. All the villagers were crying, chasing after the eagle, who after some time took the baby in a shallow pond of water. His father especially was very religious, and his grandfather was one big yogi. So whenever the father would go to hear Baba Nitar, then the small child would hold on to his father's hand and go with him and hear very attentively. At young age he joined the freedom movement of Mahatma Gandhi, but not the non-violent side, rather the armed...
Dupar Bela Arsham Maharaj boleche.
আর আমাদের মধ্যে কেউ বলেনি, বাইরের
ভালো বললো সব।
হ্যাঁ ওরা ভালো
At that time, Prabhupada was not giving Diksha, second initiation to women. But Saroj Vasani, she was very learned. Then one day she asked Prabhupada, "Oh Prabhupada, you only came to deliver men, not women. And only men are Atmans, women are not Atmans." Then Prabhupada smiled and began giving initiation to women, beginning with her. So in 1916, the young child, Vinod, to meet with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That was the time of Shinamali Parikram. At that time, Prabhupada said, there were many new disciples there, especially renounced disciples. So one day Prabhupada was talking to Saraswati Vasudevi, and he said, oh, I will perform Parikram of the globe. I will open Gaudiya Mutts in all the big cities of India and the world. I will perform Rathiyatra in London, here and there. So hearing this, Saraswati Vasudevi laughed. You were like a beggar with a bag under his head who is dreaming, I am a millionaire. Who will do all this? Then Prabhupada pointed to the young boy, oh, Vinod Bihari, he will do everything. At that time, the Muslims were not paying tax. So Srila Vinod Bihari, he went there and tied up the leader of the Muslims and flogged him with a whip. And seeing that, everyone became afraid and began paying their taxes. His style was very extraordinary. He had two horses, and he would use a very expensive dhoti and a very fancy type of kurta. And with a big hat and a whip in one hand, he would move around collecting the taxes from the residents. That time also, when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made the Mool Mandir, surrounding that area was one Muslim graveyard. Our Panaguri were thinking, this is a great shame. Our Prabhupada has built such a big mud, and this graveyard is polluting it. Therefore, secretly, he bought many big trees, like mango trees, jackfruit trees, coconut trees. And in the middle of the night, they took all the headstones of the graveyard and threw it in the Ganga. And they planted all that garden. In the morning, when the Muslims came, they were shocked and went to the British government for justice. So when the police came, they said, is it true there was a graveyard here? And Buddha said, you can see for yourself, this garden has been here for a very long time. Can such big trees like this grow in one night? So then the police agreed and they kicked the Muslims out. Especially Sri Panaguru, if anyone rose against Prabhupada, then he was like a lion. There was one Sahaja Sampradaya, and they said, the Gaudiya Mutt, what do they know about rasa? We have, like when someone chews a mango seed and spits it out, we are rasi Vaishnavas, and we have tasted the rasa of the Bhagavatam, and we spat out all the Siddhanta and philosophy, and Gaudiya Mutt are taking our remnants and chewing that. They don't know anything about rasa. So when Pankhurdev heard that, he wrote five very impressive essays. And when they got that answer, that was a very strong answer, they became very much aggrieved. Therefore they made a court case against Pankhurdev, Srila Gurudev, Srila Trigar Maharaj, Srila Bala Maharaj, Srila Srinivas Maharaj, who were running the Gaudiya Pachaka at that time. So that time, Pankhurdev took a very, very famous Calcutta lawyer named Manmad Roy. So when the opposition party saw this lawyer, they began shaking their boots. And they surrendered and did not make any court case. One time, Nirvana Sampradaya had one monthly magazine. And in that magazine they wrote, Chaitanya Mahaprabhu was defeated by Keshav Kashmiri. And after that, Keshav Kashmiri gave Mahaprabhu Gopam Mantra and initiated him. When Panagurudev read that, his eyes became red and he said to Gurudev, bring a pen immediately. Then he dictated, there was never anyone called Nimbarkachaya. Otherwise, great commentators like Jiva Goswami and Baladeva Devusan would have managed it. If there was anyone, his name must have been Nimbarvidya. So when they heard this, the opposing party became very angry. And they made a case with 100,000 rupees damages. At that time you could imagine how much. So when Pankhurdev came there with his legal representatives, then they began shaking. And the lawyer from the opposition suggested to them, brothers, be careful. You are thinking you are going down a hole, and you are thinking you are pulling out a worm, but you are pulling out a cobra. This, Bhakti Pradhan Kesamaraj, he has defeated big barristers and lawyers. So if you know it's good for you, you should bow your head and get out of there. So they took his advice and they withdrew their court case. So in 1916, he took Diksha from Srimati Siddhanta Saraswati Thakur. And then one day at college, they were discussing Sri Chaitanya Charitamrita. And there's a verse from the Bhagavatam mentioned there, Vedam Vittat Tastavedas Tattvam Yajyam Mahapayam. The professors were just explaining it in an incorrect manner. Then our Mahaprabhu was disgusted and he left everything in 1918 and took full shelter under the feet of Srila Prabhupada. After the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then the preaching movement established by him collapsed. The publications, especially the monthly Gaudiya Patrika with Devi Nari Prakash, the printing was completely stopped. Group Brahmacharis began returning home, the Grihasthas also became sannyasis also returned to the Grihastha ashram. The Navagriha and Prajapati boyfriends were stopped. Even they made a false case and put so many of the senior disciples of Srila Prabhupada in the jail. That time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he appeared in the dream of our Mahaprabhu and said, "Oh, you have to take sannyas, otherwise everything I have created will be destroyed." Three times his sannyas was ready, then made danya, danda, and prepared the cloth. But see, Bhaktivilasa Sita Maharaj, he went to Prabhupada and said, "No, Prabhupada, please don't give him sannyas, because he is managing everything. If he takes sannyas, everything will be finished." But three times sannyas was ready. So finally, again and again, Prabhupada appeared in his dream. So Bhaktivilasa, he approached Srila Bhaktivinoda Srila Goswami Maharaj and accepted sannyas from him at Katwa on the day of the sannyas of Sita Mahaprabhu's brother Vishwaroop. And he got the name Srila Bhakti Pratyan Kesar Maharaj. That name was also given by Prabhupada himself in a dream. Our Prabhupada was very, very philosophical. Verses he did not bother to put to memory, only one, two lines here and there, but he would mostly concentrate on philosophy. So, but if someone was qualified, like Uttapara Janak Maharaj, who was always discussing topics of Rasa Tattva and always discussing the Ten Kanto, then Paramahansa would never forbid him from speaking. Especially when I said so many things we learned from Uttapara Srila Janak Maharaj, even though he was such a Rasic devotee and was always speaking high topics, Paramahansa would never forbid him from speaking, and rather he would invite him every year for this Vrindavan and Navadvip Parikrama. Especially there is a verse repeated to Prajapati in the Tamil Vishnu. That verse said one who hears these topics of Sri Krishna and his pastimes with the gopis with strong faith, that person is called Dhira or very sober. By hearing those pastimes from the bona fide guru and repeating them, then calm or gopi, the mood of the gopis enters the heart and dispels the heart disease of lust forever. Here it says, one who doubts this even slightest, that person is called a wicked atheist. Our Panagurya preached so much in Assam and Bengal, especially in Bengal, two areas, Chalvis Panagana and Mitnapur, and so many Vaishnavas he made. And Gurudev was saying even today, so many devotees from Mitnapur, like Puttaparthi Maharaj, Puttaparthi Maharaj, and Mitnapur. So all these, and Chalvis Panagana, actually, most of the Bengalis from Parikram on Chauvis Parigana is all the mercy of our Param Gurudev. So finally, in 1968, he manifested the pastimes of having sickness. And he was taken to Calcutta, but there he refused treatment. Don't want to take the medicine from the doctor. And that night he would chant the name of his godbrother, Sri Narahari Sevavigrahapuru. Narahariga, Narahariga. Over and over he would say that name and weep. And then Gurudev said, "No need, medicine will not work. We will take him to Navadvip and what will happen. And 2 days after, Gurudev was saying, during the time of Sandhya, this very time, then the mala around the neck of Srimati Radhika dropped, and as the devotees were chanting, Hare Krishna, Krishna, Krishna."
One thing more. बतला दो लोगों को गुरु महाराज मथुरा से आसवार कथा छो आ भक्ति वेदांत स्वामी पत्थर भिखारी हुए मथुरा से छे और वही समय से हमें ताके जा करतन फेल हो जेतन कोनो व्यवसाय इत्यादि करते पारलें ना পথের ভিখারি হয়ে মথুরাতে ওই নিজের ঔষধের এজেন্সি করতে লাগলেন। তেনাকে দেখলাম বাঙালি ঘাটে, উনাকে ধরে নিয়ে আসলাম মঠেতে আর রাখিলাম। আমি তাকে বললাম যে আপনি এত যোগ্য যোগ্য লোক, প্রভুপাদ আদেশ দিয়েছেন আপনি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করবেন, তা আপনি এখনো সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। আর গুরু মহারাজ আসলেন, তা আমি বললাম যে আপনার ইনি বাল্য বন্ধু সখা লোক, আপনিকে বলুন যে সে সন্ন্যাস নেন। ওই সময় মুনি মহারাজ আমাদের 95 বছর বয়স, তিনি বলেন যে ইনি নিলে আমিও সন্ন্যাস নিব। তখন গুরু মহারাজ ওনাকে বললেন যে আপনার সন্ন্যাস নেওয়া উচিত। তখন প্রভুপাদের বড় বড় সন্ন্যাসীরা ছিল, কার কাছে সন্ন্যাস না নিয়ে এই গুরু মহারাজের কাছে থেকে মথুরাতে শ্রী সন্ন্যাস নিয়ে বিশ্ব মহোৎসব দিনের যে সন্ন্যাস নিয়ে আর প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।
He was the first Sevakavatam Gurudev. He developed tuberculosis, and Paragurudev was spending all the money that the other devotees, his godbrothers, were collecting.
He was very nice mridanga player and singer.
So he was spending all that money on sending him to Madras to one sanatorium. That time Gurudev was in charge of his nursing. So all the godbrothers, they were complaining to Paragurudev, "We are collecting so much difficulty and giving to you for the mission in Maru, and you are spending everything on this boy." Therefore they became a little bit disgusted and left the mission. That time our Prime Gurudev gave sannyas to 3 personalities. Pujapada Shribhatna, Sajat Sera Brahmachari, he took sannyas, Pujapada Brahmana, Dasadikari, and
Pujapada. Not Dasadikari, Brajavasi.
And Gurudev. So those three who took sannyas, so Prabhupada gave them the name Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Balan Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Shrikant Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So why did he get the name Bhaktivedanta? Prabhupada was thinking, in these days most people think that Vedanta means the conception preached by Sankaracharya of Advaita Vedanta. But this is not the real meaning of Vedanta. The essence of Vedanta is Bhakti, or devotion to Krishna. Therefore, to establish this, he gave the Upadhi the title of Bhakti Vedanta. So Gurudev, he was already going around Das. So, Rajavasi. So Gurudev said, we kept the name around, and he became Bhakti Vedanta. So, one last thing. Abhay Chandra, he had left his Grihastha ashram and he had come here to Mathura, and he was living there in Bengali Das. He was before one medical rep, one established one medical agency, one medical company. So Sri Gurudev met there at Bengali Das and said, "You are so qualified and you have been ordered to preach in the Western countries. How can you do that without sannyas?" So Sri Gurudev took him to Mathura. So there was a great friendship, like Sakiras, between Param Gurudev and Abhay Chandra. Then the Gurudev was saying, "You should give him sannyas, then he can preach." That time Pujapad Sanatan Guru, he was 95 years old. He said, "If you take sannyas, I'll take sannyas also." So on the day of Vishwaroop Mahotsav, then our Param Gurudev gave sannyas to Abhay Chandra, who after took the title, was given the title, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And we know he preached all around the rest of the country.
Go Premanandi. Do shabd guru maharaj ke sambandh mein bolenge, boliye to boliye do shabd.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. ভগবৎ बार गोस्वामी विजयनाथी महाराज का जो है, मैं बहुत छोटा था, मुझे शिकायत की रात में आता था जब से ही पढ़ गया था। मैं 10-12 वर्ष की उम्र में मैं गुरु जी से मेरी भेंट हुई सर्वप्रथम। तो ऐसा है कितना है मेरे घर पे थे उनको बुला लिए थे और बिस्कुट वगैरह जो है और वो देते थे अपने पास गोदी में बिठा लेते थे, फल देते थे। वहां में रोज में जाता था पिता जी के साथ जब से, और मेरे ऊपर इतनी कृपा थी, मेरे ऊपर इतनी कृपा थी, उनकी हर प्रकार से जो है मेरा ध्यान रखते थे और मेरे जो है परम पूज्य गुरु जी की कड़ाई में उनका जो है सम्मान करता था। और फिर बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो यात्रा करने के लिए पैरों के साथ में यात्रा यात्रा हो गई पैदल की थी। उस समय मेरे बड़े भाई उनके साथ में ब्रिंदो राजपूत में पैदल हुए थे। और उसके बाद में महाराज जी के सामने में जो है बहुत यात्रा वगैरह करी गई है और कर रहा हूँ। साथ में जो भी सेवा करती है वो मैं करता हूँ और महाराज का मेरे ऊपर बड़ा जो है
बहुत अच्छा
भाव है।
श्याम रानी 10 minutes, ऑल वक्ता विल स्पीक 10 minutes to 15।
First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipable Diksha Gurudeva, Nityananda Prabhishna Om Vishnu Pai, a stoic of such as Sri Srimanchu Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipable Sri Gurudeva, Om Vishnu Pai, a stoic of such as Sri Srimanchu Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. To all of our Guru Bhargavas, all Sannyasi Gans, and all the established Vaishnavas and Vaishnavas, Srila Gurudev has ordered me to speak a few words on the glory of his Gurudev, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. In the beginning of Srila Gurudev's introduction to our Param Gurudev's biography, he said that Srila Bhaktivinoda Thakur foretold that the time will come where everywhere in the world the holy name and the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu will be glorified. And that took place by the mercy of his own son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, and his disciples and grand disciples Gurudev mentioned, just as Srila Gurudev. Srila Gurudev said that he was always with his Guru Maharaj,
yes,
but particularly from 1945 until the end of his manifest lila in this world, he was always with him, listening to his lectures, listening to his debates with opposing parties, cooking for him, washing his clothes, and he always took many notes, but not just notes on paper. All the notes that he took manifested in his heart, and by his heart he manifested to Param Gurudev's biography. By his mercy, we have that now in so many languages all over the world. Srila Gurudev told that when his Gurudev was about 18 years old, Srivinoda Bihariji, he went with his paternal aunt, Sushma, Sri Saroj Vasani, and one other devotee, who later on became a very good speaker by the name of Nemi Maharaj. He went to see Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. the next guru of his own guru, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. At that time, Srila Gaurava Kishoradas Babaji Maharaj was staying in a municipal latrine, an outhouse, considering, as he told his own disciples many times, that I consider the stench of materialists who come to me and beg for me blessings. Please give me a beautiful wife, great wealth, good position. I consider that stench worse than the stench of this retreat. So by staying here, they don't come and harass me and disturb me. Even the superintendent of police had come and offered him that, why stay in this dirty place? We'll give you a very beautiful place where you can perform your bhajan. But he would say to this great person, big person in the government, and to all others, oh, I'm so weak, so I cannot open the door. And he wouldn't open the door for anyone. But then one day, Param Gurudev, with his paternal aunt and other god brother, came, knocked on the door, and Srila Gaurava Kishoradas Babaji Maharaj again said, I'm so weak, I cannot open the door. So he said, we have come from our Gurudev, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we beg your darshan. So as soon as he heard the name of Srila Prabhupada, he immediately opened the door, and the three entered and offered their obeisances. And then Srila Gaurava Kishoradas Babaji Maharaj told our Srila Param Gurudev that, preach, don't fear, preach very boldly, and I will personally take away all of your obstacles. So Gurudev said that our Param Gurudev told his disciples that now actually this has happened, and he protected me from all obstacles. And Gurudev gave one instance. Gurudev was telling these pastimes very interestingly on a morning walk in Miami, Florida last year. Generally when the devotees ask questions to Gurudev, he answers in one or two sentences. But then one devotee said, would you be so kind as to tell us something about your Guru Maharaj? So Gurudev went on and on and on for a very long time telling his history. And at the end, Rajanath Guru said, you took so long to tell all these pastimes. And Gurudev said, yes, I became unaware of the time. Because of his full absorption in his Gurudev and his unaware of material time, he's transforming hundreds of thousands of devotees all over the world and giving them spiritual time and spiritual engagement. So Param Gurudev said that one instance where Srila Gaurava Kishoradas Babaji Maharaj protected me from obstacles is when he was preaching in Assam. And his audience consisted of many persons from the opposing party who refused to accept the worship of Sri Sri Radha and Krishna, but only wanted to worship Krishna alone. So Param Gurudev told his audience very boldly that to worship Krishna alone is not actually pure bhakti. In fact, it's like an offense. And moreover, if somebody thinks that he's practicing bhakti, but at the same time he's taking meat, fish, eggs, and drinking wine, then his mouth is not a mouth, but it's actually a drain, which is the container of so many waste like stool, blood, and urine. So the opposing party became very furious and offended, and they began to shout out that Chaitanya Mahaprabhu is not the Supreme Personality of Godhead. What is your proof? So immediately Param Gurudev ordered Srila Vaman Maharaj to recite verses as evidence that Sri Chaitanya Mahaprabhu is in fact Swayam Bhagavan Sri Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. So Srila Vaman Gosai Maharaj immediately recited either 101 or 108 verses of scriptural evidence. And they became so angry they couldn't defeat them by argument. So they began throwing stones, trying to kill Paramahurdev and Chulalan Gosai Maharaj. So then Gurudev said there were some favorable people in the audience who started to throw stones at the offenders, and gradually everything was subsiding. Another instance, which Srila Gurudev already mentioned, which was that anybody who offended or blasphemed either Srila Prabhupada or our Guru from Rav, Param Gurudev would become furious and order Gurudev immediately, get a pen and paper, and he would immediately dictate the defeating arguments against the opposing party, and as he did in the case of the so-called followers of Nimarga Acharya, saying that Chaitanya Mahaprabhu was defeated by Deshmukh Pashmiri and then took Gopal Mantra from him. So Gurudev immediately got a pencil and paper, immediately took the dictation, and it was immediately published in the Gaudiya Patrika. So Param Gurudev was saying that I was getting so much mercy from Srila Gaurakishoradas Babaji Maharaj's blessings. Srila Gurudev very briefly discussed the history of Param Gurudev's very beloved disciple, Ananda Mohan Brahmachari. But he didn't mention that even though Ananda Mohan, because he was such a very beautiful singer and a mandola player, he used to wash the clothes of Param Gurudev and cook for him. But when he got tuberculosis, he was coughing up blood even over the clothing of Param Gurudev. But still, Param Gurudev would feed him and nourish him and clean his stool and blood with his own hands. So Gurudev said to Param Gurudev, "Please, you go for preaching, and I will take care of him. Please give me this loving burden of Ananda Mohan." So then Gurudev personally took care of him as his Guru Maharaj went to preach. And Gurudev said that he personally also cleaned his stool and blood and buried it in the earth. And as he mentioned, although his godbrothers criticized, Param Gurudev refused to listen to their opinion, and he kept Ananda Mohan in a very expensive hospital, Tamram Hospital, for patients of tuberculosis, and Srila Gurudev was also there. And then, after a few months of being in the hospital, Srila Gurudev, who had gone there with his godbrother, Trigunatiti Brahmachari, to take Ananda Mohan there, he wrote to his Gurudev, who was at that time on Navadvip Purnima with many thousands of pilgrims, that you entrusted me with Ananda Mohan, but somehow or other I couldn't save him. So now he has died in the hospital, and Trigunatiti Brahmachari and I are returning. So Gurudev said that when his Guru Maharaj got that letter from Srila Gurudev, he began to weep very, very loudly. Gurudev said, "For this, he loved me so much, and he gave me so much power, being so grateful for my devotion to him in this way, that I'm able to spread Krishna consciousness all over the world." Gurudev also told another touching story of Param Gurudev with Srila Vamana Goswami Maharaj, that he was printing Param Gurudev's books in a press in Chinchura, and his fingers got crushed in the printing press, and they got smashed, and Param Gurudev again began to weep, and he personally took him to the hospital, just as he personally took Gurudev to the hospital after Ananda Mohan Brahmachari left the world, because Param Gurudev also got some mild case of tuberculosis. So Param Gurudev personally took him to the hospital where Gurudev recovered. So Param Gurudev also took Srila Vamana Goswami to the hospital, where by his mercy, by his love, he was actually weeping for his disciple. Param Gurudev's fingers healed with only a scar remaining. So Param Gurudev was just like a lion, just like a thunderbolt, and just like a rose with his disciples. So our Srila Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, has said that the grandfather and great-grandfather are even more merciful than the father. So So Srila Gurudev is very mercifully giving us a relationship with his Gurudev so that we can pray to our grandfather to be merciful, to give us Braj Bhakti and Prince Bhakti. And just one little tiny thing, when I was painting him as one of the four paintings in the Seva Kunj altar, I asked Srila Gurudev, how can I meditate on him so that I can get to know him better, so that your will come through me and he'll be present there. And Gurudev said to pray, that I worship these countries who are even more intimate and can enter into more intimate pastimes than even Lalit and Vishaka. These Manjuris were under the shelter of Srila Rupa Manjari. So we're so lucky that we're able to participate on this day at the lotus feet of our divine Srila Gurudev.
Rasananda Brahmachari. 10 minutes to.
10 minutes on the test. Simply have one of that.
Om Jnanindriyam Nisyam Jnananjana Salakya Chakso Vritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Chandraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Krishna Padaya Acharya Singha Rupini Sri Srimad Bhakti Pragyana Kesavayati Namini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priyadvaita Gadadhara Siva Sati Gaur Bhakta Vrinda Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. My Sakshata, my Gurudev, Nitri Lava, Krishna Krishna Pada, Ashtodha Sudashri, Sri Sri Madhavati Shri Siddhanti Goswami Maharaj, Pajaran Pavalani, Anantapati Sashtra, Kandava Pranam Karta, Tadvasta, my Sikha Gurudev, Paripraja, Acharya Dadati Swami, Sri Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj, Vacharan Sarajani, Sarathha Puspanjali Karman Karman, Upasthi, Tirthani Pagra, Vaisnava Vaisnavi Samiko, Vija Thajyotra Pranam Karman. Abhi abhi hum log, Sina Nitri Lao Prabhisa Sila Bhakti Karga, Kesav Goswami Maharaj, Ki, Aprahita, Jivana Chaitra Bhubar, Ki, विभिन्न भक्तों के उद्धार बिंद से उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। जितने सारे त्रिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आश्रित है वो लोग कोई साधारण है, क्योंकि जब श्रील गौरकिशोरदास भवानी महाराज, श्रील भक्तिमन ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास भवानी महाराज, जब उन लोगों ने प्रभुपाद को बढ़ने बहुत बहुत कुछ दायित्व देकर गए, प्रभुपाद उसको जब अप्रकट हो गए, प्रभुपाद बड़े चिंता में पड़े थे, ये गुरुवर्गों का आदेश मैं कैसे पालन करूं, मेरे पास न जन बल नहीं, मेरे पास न अर्थ बल नहीं, लेकिन गुरुवर्गों ने मुझे आदेश दिया है सर्वत्र महाप्रचार को प्रचार प्रसार करने के। एक दिन श्रील प्रभुपाद अपना स्वप्न समाज में दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु कई तरह साथ में प्रकट हुए और जितने सारे गुरुवर्ग प्रकट होकर के प्रभुपाद का आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम अकेले, बोले अकेले नहीं, हम सब के सब तुम्हारे पीछे हैं, कोई चिंता मत करो, तुम प्रचार करो, हम सबके सब, हम सेवा करो, अर्थ हम सबके सब प्रदान कर रहे हैं। तब प्रभुपाद कहते थे, मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन जब महाप्रभु गुरुवर्गों का ये आदेश को पाकर मेरे को लगा मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में संपूर्ण महाप्रभु का परिकर है। इसलिए जब उसको बाद में उनको मन में जो उत्साह जो प्रेरणा, तब सौ हृदय में उत्साह
उत्साह आ गया। सतगुरु से श्रील प्रभुपाद जब श्रील प्रभुपाद नयनमठ मंदिरी श्री राधारण की नित्य सेवा में निकुंज में वहां पर संलग्न थी, स्वयं राधारण आदेश देती है नयनमठ मंदिरी, जाओ तुम अकेले बन जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के तुम जाओ और महापुरुष का पाठ को प्रचार और प्रसार सर्वत्र करो। सतगुरु से श्री चैतन्य महाप्रभु जी से संपूर्ण परिकरों को लेकर के आए, उसी तरह से लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी वो अकेले नहीं, संपूर्ण निकुंज संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर के आए। उसका प्रमाण है श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, बोले विनोद अभी तक तुम कहा था, देखो वो उत्तर देते हैं फिर बोलते हैं अभी तक आपको यहाँ याद नहीं किया है, अभी आपने याद किया आपको सेवा में आ गए, तो समझो इतने बड़ी बात है ये लोग। इसलिए प्रभुपाद बाबा जी लोग कहते हैं कहते गौरी श्री गौरी मठ वाले तो अपना शिष्य को कोई सिद्ध प्रणाली देते नहीं, उनका कोई सिद्ध स्वरूप बताते नहीं, कहते प्रभुपाद ऐसे ही जो उन्होंने इंगित जो किया है इनका नाम विनोद दिया है, कहते विनोद कौन है, कहते विनोद नजरी है, मतलब ये इसलिए कहते ये उनको विनोद लिखा के नजरी मानो आज का दिन जो वो अंदर छान हुए आज का दिन पूर्णिमा की रास है, इसलिए मानो वो रास में संतो थे एक व्यक्ति ने कहा कौन श्री विनोद नजरी, इसलिए मानो उसी में आज का दिन अपना नित्य परिकर श्री विनोद नजरी को स्वयं उन्होंने बुला लिया। तो उसका प्रमाण क्या, तो प्रमाण है जब वो अंदर ध्यान हुए तब राधा रानी की गला की माला हाथ में खुल गई, इसका मतलब क्या है, राधा रानी स्वयं को अपना सेवा में राधा रानी को अपना तरफ में बुला लिया है। इसलिए कहते हर आचार्य का एक वैशिष्ट्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अपना अपना एक एक परिकर को द्वारा किसको द्वारा सिद्धांत किसको द्वारा रस किसको द्वारा भक्ति ग्रंथ किसको द्वारा तरह तरह जैसे एक एक भक्तों को द्वारा उन्होंने एक एक अपना भाव रूप में अभिव्यक्ति किए है, उसी तरह का श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अपना अपना एक एक परिकर को द्वारा एक एक रूप में वैशिष्ट्य उन्होंने दिखाया। इसे ऊपर से महाप्रभु का परिकर में थे प्रभुपाद का परिकर
দাস ব্রজ মহারাজ দয়ার কথা বলেছে, তোমার সব বিপত্তি সামরানিধি বলেছে তুমি কিছু বলবে
समझ नहीं सकते हैं उनको का चैतन्य चैतन्य संपूर्ण गोस्वामी ग्रंथ का संपूर्ण वहां पर महाराज जी उठा दिया है। इसलिए श्री चैतन्य मनभीष्ट स्थापित जनमुतले, अगर बोला जाए प्रभुपाद मनभीष्ट स्थापित जनमुतले स्वयं भक्ति प्रज्ञानं कदाचित् ददाति स्वभाव। प्रभुपाद का संपूर्ण मनभीष्ट को यदि भक्ति प्रज्ञान कैसा होता है महाराज स्थापित किया, क्या उनकी जो मनभीष्ट है उनका जो मनभीष्ट है यदि श्री केशव मनभीष्ट स्थापित जनमुतले स्वयं नारायण Thank you. सबके सब महाराज के चरण में आए, सबके सब महाराज के चरण में आश्रय लिया है। इसलिए महाराज सभी को अपना प्रेम स्नेह प्यार दे करके सभी को अपना चरण में उन्हें स्थान दिया है। इसी रूप में उनका प्रभु वैशिष्ट्य को उतरे। मैं जब उनके विषय में सोचता हूँ जैसे उनका वैशिष्ट्य मुझे देखे सागर रूप में दिखता है, मैं तभी प्रारंभ ही करता हूँ। इसलिए हम उनके चरण में प्रणाम करते हैं। अभी अलग अलग वैष्णव लोग उनका अलग अलग वैशिष्ट्य को करते हैं, अलग वैशिष्ट्य महाराज को उनका ग्रंथों को ऊपर लिखे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग परम सौभाग्य वाले महाराज को श्री चरण में आए आशीर्वाद करें। जैसे कविता करती महाराज का अनुग्रह चले हम भगवान करते हुए
श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ गुरु महाराज जी का चरित्र का वैशिष्ट उनका उपदेश के संबंध में बोलेंगे। अखिलेश अंग्रेजी का अनुवाद कर छे सब लोग सुन छे की
संसार में दे दिया है। Yeah.
অনেক দেরি হয়ে যায়।
ওনাকে বললাম না কালকে বলবো না,
বলো না তো
কালকে বলো, চিন্তা নেই
কালকে তো আর সব হবে।
ওরা সব দিচ্ছে টাকা,
কিছু কিছু দিচ্ছে,
তিন চারটি বললাম ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করে দাও,
বলে দিয়েছি কালকে টিকিট আনবে আজকে
কে
করে নেবো, আজকে বলে দিয়েছি আবার বলে দেবো টিকিট আনতে, কাল
দু তিন দিন আছে এর মধ্যে সব জেনে নেবো।
আজকে এবার শেষ হয়ে যাবে তো, আজকে এইবার শেষ করে দেবেন তো,
হ্যাঁ
এনার এনার বলার পর আজকে শেষ হবে তো,
শেষ করে দিন।
কালকে হবে ফের আবার এই কালকে এইটা এই বিষয়ে গুরু মহারাজের সময়
যা বলবেন, একদিন হলে হলো ক্ষতি কি,
Thank you. এটা পড়বে না, ভিভিআই ভিআই আমাদের লাইব্রেরি বলে প্রথম আসে গ্রন্থে লিখা আছে তো দিয়েছেন অপাঠ্য কোন গ্রন্থে আর কি
গ্রন্থ লিখেছেন যে সব বাঙালি জাতিরা রেজিস্ট্রেশন নাম করিয়ে
সকালে বলা হবে
না না বলে।